मैम, सबसे पहले तो आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डाइट में है आपकी, आप पहले हमें वो बता दीजिए।
मैम, मैं यहाँ पर केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ और हम लोगों को बेसिकली जो सबसे काम करने होते हैं टीचिंग है, डीएलएड स्टूडेंट्स का जो हम लेक्चर्स लेते हैं। सेकंड जो हमारा वर्क है यहाँ पर वो है सपोर्टिव सुपरविज़न का। हर मंथ हमको 10 स्कूल्स का सपोर्टिव सुपरविज़न करना होता है, जो कि हम लोग जितने भी हमारे उसमें बिंदु दिए रहते हैं उनका करते हैं। और जैसा कि नेम, इट इज़ क्लियर बाय नेम, सपोर्टिव सुपरविज़न मीन्स हम वहाँ एक निरीक्षण की दृष्टि से नहीं जाते हैं। जो भी हमें कमियाँ वहाँ दिखाई देती हैं, हमें उस कमी को टीचर को उसका सॉल्यूशन बताना है, जिससे कि वो आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर पॉसिबल होता है तो हम फीडबैक भी लेते हैं।
अच्छा।
जैसे कुछ भी अगर हमने किसी टीचर को सजेस्ट किया कि वो इस रूम में ऐसा कर सकते हैं या रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लेवल, तो अगर पॉसिबल होता है, हमारी यही कोशिश होती है कि हम स्कूल्स रिपीट ना करें। जैसे अभी मैंने इस जुलाई में यहाँ ज्वाइन किया था, तो अभी मेरे 50 प्लस स्कूल्स हुए हैं, तो आई हैव रिपीटेड ओनली 3 स्कूल्स। सभी मेरे यूनिक स्कूल्स हैं और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम अपनी डायट प्रचार्य सर से भी डिस्कस करते हैं और भी उसको भी बताते हैं। जैसे अभी मेरे एक स्कूल में एक जो सर हैं वो हैंडीकैप्ड हैं, ड्यूरिंग जॉब ही उनको पैरालिसिस हुआ। तो अभी वहाँ फिर मैंने यही सजेस्ट किया कि हम उनको कुछ ऐसा वर्क दें, वो स्कूल आ रहे हैं कि वो अगर लिखने वाला सारा काम वो कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके की जो भी समस्या हमें किसी स्कूल में लगती है वो हम अपने पास भी नोट करते हैं, और जो हर माह यहाँ डाइट की समीक्षा बैठक होती है उसमें भी हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और जो उनके अच्छे पॉइंट्स होते हैं उनको भी हाईलाइट करते हैं। तो उसके बाद बीइंग साइंस फैकल्टी, जो हमें रोल दिया जाता है, जितनी भी हमारी साइंस से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएँ होती हैं वो सभी प्रतियोगिताएँ हमें करानी होती हैं। अभी जैसे हमारे डाइट के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे राज्य स्तरीय लेवल तक आ गए हैं, और अभी एट प्रेजेंट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन लखनऊ, और मैंने भी वहाँ टीचर ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था एंड आई गॉट सेकेंड रैंक। तो थैंक यू मैम। तो उसमें लेकिन जो फर्स्ट थे हमारे, तो जो डाइट का स्टूडेंट है उस वो फर्स्ट थे उस ग्रुप में, तो वो अभी मेरठ मंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 डेज का वो चल रहा है। तो उसके अलावा हमें टीचर्स को साइंस से रिलेटेड वर्कशॉप्स, जो हम नहीं करा पा रहे हैं, मतलब जो मेरा एक तरीके से है कि हमें टीचर्स की टाइम टू टाइम वर्कशॉप करानी चाहिए।
जी, जी, जी।
तो उसमें जो हमारी एक बात होती है यहाँ पर, तो उसके लिए शायद बजट और ये सब चीज़ें होती हैं, या वही वर्कशॉप्स होती हैं जो ऊपर से लेटर्स आते हैं।
जी, जी।
पर मुझे लगता है कि उसके लिए हम लोगों को डायरेक्ट लेवल पर इंडिविजुअल कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो करवाना चाह रहे हैं, लाइक वी आर लैकिंग इन एक्सपेरिमेंटल पार्ट।
जी, जी।
तो उसका मुझे लगता है कि हमें कुछ उस फील्ड में वर्क करना चाहिए। बाकी जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उन ट्रेनिंग्स को हम कराते हैं, और जो भी साइंस से रिलेटेड पूरे ज़िले में काम होता है उसमें हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम लोगों का जॉब रोल है यहाँ पर।
मैम, आपके रिलेशन फिर एआरपी के साथ कैसे रहते हैं?
बहुत अच्छे हैं। मेरे जिस ब्लॉक की मैं डाइट मेंटर हूँ किला, मेरे अपने बीओ और एआरपी सभी के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन है। जैसे अभी हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत हमें हो रही है तो हम एआरपी को भी बताते हैं उसके बारे में और बीओस को भी बताते हैं
कि ये एआरपी।
मेरे ब्लॉक में इस समय 3 एआरपी हैं, उसमें एक तो जो है हमारे भाषा के हैं, मैथ्स के हैं, और हमारे साइंस के हैं। तो एआरपी की वहाँ शॉर्टेज है 5 में से।
मैम, कभी एआरपी, फॉर एग्जांपल आपने बताया कि यूनिक स्कूल्स होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि एआरपी और आपके स्कूल्स रिपीट हुए?
नहीं, एआरपी कोशिश मेरी यही होती है कि क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है डाइट मेंटर्स को विजिट से पहले, एआरपी को इन्फॉर्मेशन देकर जाना है, प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है। तो स्टार्टिंग में एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं जिस स्कूल में गई हूँ तो मुझे पता चला, मैं कभी किसी एआरपी के साथ नहीं गई हूँ किसी भी स्कूल में, सेम टाइम मैंने किसी के साथ सपोर्टिव सुपरविज़न नहीं किया। मैं अवॉइड करती हूँ उस चीज़ को कि हम दो लोग एक ही स्कूल में एक ही टाइम में सपोर्टिव सुपरविज़न ना करें। तो उसमें ऐसा हुआ कि मेरे साथ स्टार्टिंग में 2 बार ऐसा हुआ कि मेरे से पहले एआरपी मैम करके जा चुकी थी, मुझे उसकी सूचना नहीं थी, तो मैं भी बाद में पहुँच गई। क्योंकि हम लोगों का कुछ ऐसा जो डेज फिक्स हैं और अगर उन डेज में हमारा लेक्चर है तो हम नहीं जाते, मतलब मैं नहीं जाती हूँ उसमें अगर मेरा लेक्चर है तो. तो कोशिश यही होती है कि हम दो लोग एक साथ सपोर्टिव सुपरविजन ना करें. मैंने कभी नहीं किया है, मतलब एज एन इंडिविजुअल एआरपी के साथ बात जरूर कर लेते हैं. हाँ जी
तो मैम, जो आपने अपनी रोल्स के बारे में बताया, आपने फ्री सर्विस के बारे में बताया, ट्रेनिंग जो इन सर्विस टीचर्स के लिए भी आप करते हैं.
हाँ जी.
तो मैम, डाइट के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है, डाइट के 6 डिपार्टमेंट्स है शायद,
7 डिपार्टमेंट्स,
7 डिपार्टमेंट्स है, तो उन डिपार्टमेंट्स, मतलब आप प्री सर्विस की टीचर है, इन सर्विस की है कि वैसे
मैम ऐसा कुछ नहीं है. जैसे हमारा जो भी उससे रिलेटेड वर्क आ रहा है अभी तो हम उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं. जैसे मैं साइंस का देख रही हूँ तो जो भी ट्रेनिंग है या हमारे ब्लॉक स्तर पर जितनी एग्जीबिशंस हो रही हैं उन टीचर्स से बात करना, या अभी जैसे मंडल स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई उन टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करना, तो उसमें बच्चों का काफ़ी अच्छा वो रहा. तो बाकी वर्कशॉप्स जो है वो मेरा एक मतलब वो है कि वर्कशॉप्स हमें ज़रूर करानी चाहिए. जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं और हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स नहीं करा रहे हैं टीचर्स, तो उसमें क्या है कि स्टाफ की जैसे कमी है, कहीं साइंस के टीचर्स हैं जो जूनियर स्कूल्स हैं उनमें स्टाफ की कमी है. जैसे वहाँ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि वहाँ गणित विज्ञान का कोई है ही नहीं टीचर.
अच्छा.
तो उस प्रॉब्लम के लिए हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसी चीज़ें हों कि हर टीचर को विज्ञान का उतना आता हो, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है, हम उसको 10th तक पढ़ कर भी आए हैं. अब जो लोग उन चीज़ों को भूल चुके हैं या जो अपडेटेड नहीं है, वो बुक में सारी एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं बट दे आर नॉट डूइंग इन प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस, तो उनको मुझे लगता है कि हमें बीच बीच में ऐसे ही अगर हम वर्कशॉप्स करते हैं तो ब्रशअप हो जाते हैं.
जी जी
ठीक है.
मैम, आपको क्यों लगता है कि ये वर्कशॉप्स क्यों नहीं हो पाते?
मैम उसके लिए जैसे अभी हमारी डाइट स्तर में बात होती है तो उसके लिए जैसे बजट्स हैं, तो वो सेंक्शन हमारा बजट उसके लिए पूरी रूपरेखा बनेगी, वो कैसे चीज़ें आएंगी, इन चीज़ों का कुछ हम लोगों को अच्छे से वो नहीं होता है. सपोर्ट जो मिलेगा वो हमें डाइट स्तर पर ऊपर जाएगा, तो वो एक इतनी प्रक्रिया होती है, या उस बीच में अगर और सब्जेक्ट की कोई चीज़ें आ गई तो हम टीचर्स को कैसे यहाँ बुलाएंगे. तो इस चीज़ का मेन हमें उसका ही रास्ता खोजना पड़ेगा. एक हम लोगों को ऐसा गाइडलाइन मिले कि हम सब्जेक्ट वाइज करा सकें, क्योंकि साइंस में जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8th का जो स्टूडेंट होता है उसी को अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं 9th में आकर.
अच्छा.
8th तक तो हमें साइंस पढ़ाना है, तो अगर वो साइंस विषय के लिए उसके अंदर रुचि हमें डेवलप करनी है तो हमें उसको एक्सपेरिमेंट्स बहुत कराने पड़ेंगे. जैसे विज्ञान किट है लेकिन टीचर्स उसका बहुत अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको अगर हम और थोड़ा सा गाइड करें. अब हम सपोर्टिव सुपरविज़न के टाइम पर उतना उनको टाइम, सपोज टीचर ही नहीं है, हमने उनको बता दिया कि मैम आप ये कर सकते हैं, सर आप ये कर सकते हैं, लेकिन एक फीडबैक फिर से लेना, क्योंकि हम 10 स्कूल्स करते हैं मंथ में और भी जो हमारा वर्क है या तो हम उसी पर फोकस करते रहें तो वो चीज़ें अफेक्ट होती हैं. तो अगर हम कुछ ऐसा प्लान करें कि उनकी वर्कशॉप्स हम कराएं, चाहे वो हम मंथ में रख दें, ब्लॉक वाइज रख दें कि इस ब्लॉक का हमने इस मंथ को रख दिया, वो फिर उसको हम कर सकते हैं. वहाँ पर थोड़ा काम करने की साइंस फील्ड में ज़रूरत है.
मैम, प्लानिंग और गाइडलाइन से एक क्वेश्चन है कि सीनियर लेक्चरर्स जो होते हैं,
हाँ जी,
वो आपके इन्वॉल्वमेंट में कैसे रहते हैं? बिकॉज हमें पता चला कि वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों काम करते हैं.
हाँ जी.
तो एकेडमिक के लिए आपके लिए वो कैसे हेल्पफुल होते हैं?
मैम इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे, मैंने जब भी जिससे सपोर्ट मांगा है मुझे सबको ही सपोर्ट करते हैं. मतलब मैं पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलती हूँ, तो मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे. जो उनके हाथ में चीज़ होती है, जो भी चीज़ वो हमें हेल्प कर सकते हैं या उनकी गाइडेंस से हमें हो रहा है तो वो हमें गाइड करते हैं.
तो मैम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे यहाँ पे लैब नहीं है, आप साइंस
हाँ जी
है, तो आप वो मांग किससे करते हैं?
वो हमने प्राचार्य सर को कहा है आते ही इस चीज़ के लिए, तो सर ने कहा था कि बहुत जल्दी ही हम लोगों की जो लैब है वो हम लोग पूरा सेटअप करेंगे उसको. तो उस चीज़ के लिए हम लोग कई बार कहते रहते हैं, जैसे आज आप क्लास में आए थे तो मैं मैथ्स किट, तो ये होता है कि अपने स्तर पर फर्क हम जो कर सकते हैं, लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. अगर कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो बीइंग टीचर हमें उसका सॉल्यूशन भी खुद ढूंढना पड़ेगा. हम हर समय ये कहकर भी नहीं चल सकते कि ये चीज़ नहीं है. तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हम उसको अवेल करते हुए काम करते हैं. लेकिन इस चीज़ का सर से भी हमने डिस्कस किया है कि हाँ हमें वर्कशॉप्स करते करनी चाहिए टीचर्स की, तो सर ने फिर उसमें ये कहा था कि हम लोग आगे भी इस चीज़ को करते हैं। तो जैसे अभी हमने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराया, शिक्षक वर्ग में उनको पार्टिसिपेट कराया, तो उनमें से पहले कोई नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर हमने कहा आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। तो पहले वो 10 स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हुए, लेकिन लास्ट बिफोर 2 days ऑफ दैट कॉम्पिटिशन ओनली 5 वर लेफ्ट। लेकिन जब उन 5 ने पार्टिसिपेट किया और सभी को अच्छी रैंक मिली, तो और पूरी क्लास फिर मोटिवेट हुई। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, और यहाँ पर मैम थोड़ी सी एक चीज़ ये है कि जो हमारा डैट का सिलेबस है
जी,
वो अच्छा नहीं है।
अच्छा।
मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर वो सिलेबस कुछ ऐसा रिवाइज हो और वो कुछ हम और उसको लेंथी सिलेबस हो। अभी अच्छा। जैसे साइंस में सिलेबस इज़ वेरी शॉर्ट, 25 मार्क्स का पेपर होता है।
अच्छा।
तो हम उसमें केमिस्ट्री में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बायो में जैसे सिलेबस है, सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम उसमें कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड सिलेबस ही डेवलप हो, डेवलप करें खुद से भी, हम खुद करा रहे हैं लेकिन वो उसमें कहीं वैसे नहीं है एक्टिविटीज़, वो हम अपने स्तर पर ही कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट ज़्यादा शायद रहेगा यहाँ पर, उसको इंटरेस्ट आएगा। तो सिलेबस में जो थोड़ा डल पार्ट है उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स का रुझान कम है। और दूसरा जो हमारे साथ नेगेटिव पॉइंट हुआ है कि जब से हमारा ये रूल आया है कि बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर प्राइमरी टीचर्स, तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी मेजर प्रॉब्लम, कि वो स्टूडेंट तो उसको लगता है कि श्योर नहीं है तो वो बीएड की तरफ भी जा रहे हैं। तो ऐसे में उसको रोकने के लिए हमें सिलेबस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि उसको लगे कि नहीं ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है और हम और अच्छा निकलेंगे इसे करके।
कैसे तो आप स्पेशलाइज कर रहे हैं
क्या उसमें, हम उसको करना पड़ेगा हमें, जैसे हम स्पेशल एजुकेशन का कुछ ऐड कर दें, कुछ डिप्लोमा ऐड कर दें। जैसे ड्यू में होता है कि हम लोगों को अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन कुछ छोटे छोटे कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो अगर हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहाँ डाल दें कि ये स्पेशल एजुकेशन का हो रहा है आपका, ये हमारा इस एजुकेशन का हो रहा है, तो स्टूडेंट विल मोटिवेट, उसको लगेगा कि समथिंग इज़ न्यू हेयर, जो मुझे करूँगा वो बीएड वाले नहीं दे पा रहे लेकिन यहाँ मेरे को आगे भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये मेरा एक सजेशन है, ये मैंने अभी हम लोगों का रिसर्च पेपर के लिए गया था, वहाँ भी हमने स्कूल एजुकेशन में, मैंने वोकेशनल एजुकेशन पर भी काफ़ी पॉइंट्स बताए थे कि हमें यहाँ भी अगर हम कुछ वोकेशनल पार्ट डाल दें उनके लिए और स्पेशल एजुकेशन के लिए कुछ डाल दें छोटे छोटे कोर्सेज, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें स्टूडेंट को रोक पाएंगे हम और अच्छा।
तो मैम आपने जो अभी पॉइंट्स बताए ये बहुत हेल्पफुल होंगे, स्पेशली क्योंकि आप फील्ड में हैं, आप टीच कर रही है।
हाँ मैम, जो प्रॉब्लम मैं मतलब रियल चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी कुछ ना कुछ न्यू सोचती रहती हूँ या पढ़ती भी हूँ, तो मतलब ये बिल्कुल वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस कर रही हूँ अपने सब्जेक्ट में, मैं फेस कर रही हूँ कि हमारे पास सारे स्ट्रीम का बच्चा आता है, वो बच्चा आता है जिसने कभी 10th में साइंस पढ़ी थी और वो उस बैकग्राउंड से आ रहा है, यूपी बोर्ड से आ रहा है, जहाँ उसको कहाँ एक्सपेरिमेंट्स नहीं बताए गए। अभी जैसे मैं अपनी एक उस दिन बायो का डिस्कशन चल रहा था, तो स्टूडेंट्स को कॉमन प्लांट्स के बारे में नहीं पता था कि हम लोगों को मीजोफाइट्स हैं हमारे एरिया में प्लांट, तो अगर हमारा ज़ीरोफाइट है तो उसकी क्या वो हैं। मैंने उनसे कहा आपने कभी कोई नर्सरी विजिट की है, आपने ये प्लांट देखा है, क्योंकि ऐसे ग्रामीण परिवेश के भी बच्चे आते हैं तो उनको कॉमन प्लांट्स के बारे में भी नहीं पता था। तो अगर हम उन चीज़ों से उसको जोड़ें, वो अगर हमारे पास लैब होती है तो हम अपने स्पेसिमेंस दिखाएं, तो वो एक पूरा फिर टीम वर्क होता है कि हम सारे साइंस के लोग मिलकर उनके लिए वैसा करें। जैसे अभी हमारे पास बायो के कोई लेक्चरर नहीं है यहाँ पर, हो सकता है कहीं फिजिक्स के ना हों या हो सकता है कहीं केमिस्ट्री के ना हों, तो अगर वो तीनों स्ट्रीम्स मिल जाते हैं तो हम उस सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा उनको कर सकते हैं।
तो मैम आपने ये फीडबैक या फिर ये फीडबैक देने का चैनल क्या है आप जो जैसे हमें बता रही है?
ये तो मैम मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है
जी,
जो हम बीइंग डायट लेक्चरर फील करते हैं, मतलब जब से हम डायट लेक्चरर उसमें आए हैं जॉब में, तो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं कि ये सब हमारी प्रॉब्लम्स मेन क्या है कि सिलेबस बहुत अच्छा नहीं हम कह सकते। अभी जैसे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो उसमें हमारा कुछ फिक्स नहीं है, 25 मार्क्स में जैसे इस बार बायो पार्ट ज़्यादा आ गया।
अच्छा।
अब कोई अगर कहीं पर बायो लेक्चरर नहीं थे या बायो का नहीं ध्यान दिया गया तो उससे रिजल्ट अफेक्टेड होगा, तो कुछ उसमें ये भी दे दिया जाए कि इतने लेक्चर्स में या बायो इतने मार्क्स का होगा, कुछ वेटेज फिक्स कर दिया जाए या उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसे अभी हम लोगों का जो प्रोजेक्ट वर्क होता है तो उसमें भी बहुत सिंसेरिटी से नहीं करते। जैसे हम, मैं चाहती हूँ कि मैं साइंस में बच्चों को एक प्रोजेक्ट दूँ, अब और सब्जेक्ट्स में चार्ट्स या मॉडल्स का ही ट्रेंड चल रहा है, तो लीक से हटकर काम करने में मैम प्रॉब्लम्स तो आती हैं, रिजल्ट्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन वो टाइम लेता है। जैसे अभी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो उन्हें अच्छा लगा, तो हमने कहा आप ऐसे ही प्रोजेक्ट वर्क्स करेंगे, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हम आपको बनवाएंगे। तो अगर वो सभी सब्जेक्ट्स में एक गाइडलाइन ऐसी आ जाए कि आपको ये करना है, रिसर्च में ये देना है, तो शायद उससे हमारे पास और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अगर सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी होगा तो।
बिल्कुल मैम, डीएलएड के साइंस के करिकुलम में आपको क्या लगता है कि वैसे करिकुलम है कि ये बच्चों, जो बच्चों को आना चाहिए, या फिर पढ़ाते कैसे हैं?
नहीं, पढ़ाने में तो मैम देखिए, पढ़ाना तो डिपेंड करता है टीचर पर। अब हम उसी सब्जेक्ट को, जैसे आज आप सुबह क्लास में आए थे तो हमने वही सॉलिड लिक्विड गैस का जो हमारा टॉपिक था उसको हमने एक्टिविटी में भी ले लिया, या अगर हम बायो का कुछ करा रहे हैं उनको, स्टूडेंट्स को, तो हम उसको अपने जितनी हमारे पास लीव्स हैं ये हम चीज़ें उन्हें दिखा सकते हैं, स्पेसिमेन हम उनको दिखा सकते हैं। ये तो हम इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करेगा, हम उस सब को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। लेकिन अगर ये सभी डाइट्स में एक यूनिफॉर्म होकर और उस सिलेबस को हम थोड़ा सा रिवाइज करें और उसको आज के परिवेश से भी जोड़ें तो वो और अच्छा भी हमारा हो जाएगा। बिल्कुल, उसको हम अपडेट करें। और जैसे छोटे छोटे से मैंने आपको बताया ना, हम उनको डिजास्टर मैनेजमेंट ले लिया हमने, या हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले लिया। लाइक अभी मैंने जब पार्टिसिपेट किया था साइंस एग्जीबिशन में, तो मैंने एक एनवायरमेंटल कैलेंडर डिज़ाइन किया था। तो इस तरीके की हमने चीज़ें दे दी, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। अब हमारे डाइट में अभी अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट नहीं है तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए तो मैम एक टीम वर्क की ज़रूरत होगी कि पूरा हमें सपोर्ट मिले। उसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को।
जी 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 मैम, एक फीडबैक चैनल है वैसे कहीं पे डाइट के अंदर?
नहीं मैम, ऐसा तो कोई फीडबैक चैनल हमारे पास नहीं है, कि बच्चों के पास भी शायद अभी कोई हायर अथॉरिटीज़ पूछती हूँ तो हमें मालूम नहीं। हम लोग तो स्टूडेंट से ऐसे इन जनरल काउंसलिंग करते हैं। जैसे अब साइंस सब्जेक्ट है, अब जो साइंस स्ट्रीम का आ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट, तो उसको लगता है कि मैं, मुझे तो ये कुछ भी सिलेबस नहीं है। लेकिन अब वो सपोज बीटेक है और यहाँ बायो ज़्यादा आ गया, अब वो बायो भूल चुका है तो हम उसको, या फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो हम उसको थोड़ा अपग्रेड अगर करेंगे तो उसको ये लगेगा कि कुछ नई चीज़ें हैं। मुझे कंटेंट अपग्रेड, थोड़ा उसका लेवल अच्छा होना चाहिए, थोड़ा जो लेवल है, जैसे उसमें हमारा टीचिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। जैसे हम बीएड करते हैं, हम लोग बीएड करके आए हैं, तो बीएड में हमारा साइंस में होता था साइंस का टीचिंग।
जी जी।
तो उसमें सबसे पहले होता है कि हाउ विल यू यूज़ अ लैब, क्या आपकी प्रिकॉशंस हैं, फिजिक्स में क्या है, फिजिकल साइंसेस का अलग होता है, बायोलॉजिकल बायो साइंसेस का अलग होता है। तो अगर हम कुछ इस तरीके की बुक्स में चीज़ें डाल दें तो उनको बेसिक चीज़ें पता होंगी, क्योंकि हम उन्हें टीचर बनाने चाह रहे हैं तो उनको वो उस बैकग्राउंड से भी नहीं है। और यहाँ हमारे सिलेबस में अगर वो बच्चा वही पढ़ेगा, क्योंकि पेपर तो हमारा उसी सिलेबस में से आता है, तो अगर हम उसमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स को ऐड कर दें, एक्टिविटीज़ को से रिलेटेड ऐड कर दें, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर क्वेश्चन पेपर में भी वही चीज़ें आने लगेंगी तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा वैसा ही। तो अभी तो हमारा एक क्लासिकल टाइप का पेपर पैटर्न है, तो उसमें चेंजेस आने चाहिए थोड़े से, कि हम उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में भी लाएं चीज़ों को। जैसे और जगह प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ भी अगर हमारे प्रैक्टिकल्स में वही चीज़ें आएँ, इंटरनल्स में वही चीज़ें आएँ, तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे।
तो मैम, आपको लगता है कि अगर डाइट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे किसी और, लाइक सारी मोस्ट भी अथॉरिटी डाइट के पास है, तो बेटर हो सकती हैं चीज़ें?
जैसे आपने कहा कि वर्कशॉप्स और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर
हाँ मैम, उसमें जो मतलब स्मूथ हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारा ऐसा चलता है कि पहले वहाँ से हमारी परमिशन आएगी, तो एक इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि हम जब तक उस चीज़ को करना चाहते हैं तब तक उसका टाइम ही ओवर हो रहा है, या उसकी, जैसे मुझे लगता है कि स्कूल सेशन स्टार्ट हुआ, बीच में जो टाइम है हमने उस टाइप से कुछ वर्कशॉप्स रख दी है बीच बीच में टीचर्स के लिए। तो अगर हम इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेते हैं कुछ चीज़ों के, तो वहाँ पर हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो मतलब जो बीइंग एन इंडिविजुअल मेरी ये है, उसमें जो पूरा एक प्रोसेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उनकी क्या प्लानिंग होती है वो मैम हायर अथॉरिटीज़ को ज़्यादा पता होगा, लेकिन हम लोग तो लेक्चरर होते हुए यही सोचते हैं कि शायद थोड़ा सा इन चीज़ों में अगर हमें लोकल लेवल पर फ्रीडम मिलती है और हमें सपोर्ट मिल जाता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं. मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे ये लगता है कि बहुत एक जो चैनल होता है, उस चैनल में अगर कोई भी एक वीक लिंक होता है तो वो पूरा सिस्टम हमारा स्टॉप हो जाता है. जस्ट लाइक अ नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना, कि नेगेटिव कैटलिस्ट पूरा सिस्टम ब्लॉक कर देता है. तो उस चैनल में सपोज 10 लोग इन्वॉल्व हैं और 10 में से अगर 2 कमजोर कड़ियाँ आ गई हमारी, तो वो 8 लोग शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, उन्हें दिक्कत आएगी.
मैम कोविड के समय आप थी राइट से जुड़ी हुई?
मैम कोविड के टाइम में एज एन ARP वर्क कर रही थी, क्योंकि मैं प्राइमरी उससे आई हूँ.
अच्छा,
तो उस समय मैं डाइट में नहीं थी.
अच्छा, तो फिर मैम अगर आप बता पाए कि आपके कोविड के समय ARP की क्या.
मैम कोविड के समय एक बहुत चैलेंजिंग हमारा जॉब था, जिसमें हम कई चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल रहे. कई जगह दिक्कत आई, सबसे पहली जो दिक्कत आई उन लोगों को मोटिवेट करने में जो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है, जो एज बाउंड होकर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है. तो उन लोगों को समझाने में, जैसे बहुत सारे लोग, तब हमें दीक्षा ऐप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं ममाना ब्लॉक को देख रही थी डेली, हमें 15-20 कैंडिडेट्स को कॉल करना होता था, तो मेरी शायद हाफ एन आवर की भी काउंसलिंग हो जाती थी एक इंडिविजुअल के साथ. तो उनको ये समझाना कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, तो फिर उनको ये भी एग्जांपल मैं देती थी कि घर में अगर आपके बच्चे हैं और वो अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो आप उनकी भी काउंसलिंग, वो आपकी काउंसलिंग कर देते हैं ना, और आपको वो बात माननी पड़ती है. तो अगर हमारे विभाग में कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं और वो हमारे लिए अच्छी हैं, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. तो उसमें ऑनलाइन में मैम कुछ चीज़ें ट्रेनिंग्स थी हमने बहुत अच्छे से. जो दिक्कतें आई कि जो लोग, शायद सबसे पहली चीज़ होती है मेंटल सेटअप.
जी बिल्कुल,
अगर हम मेंटली प्रिपेयर हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम हर्डल्स के बाद भी कर लेते हैं. तो जो लोग उस हर्डल को क्रॉस कर गए, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया. कुछ हमारे ऐसे भी टीचर्स रहे जिन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड जो हमारा एक कल्चर है जॉब्स के अंदर है, तो उनके उसके कारण काम नहीं करा. तो चैलेंजेस आए स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे पास उस वर्ग का बच्चा आता है जो शायद फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाते, एक स्मार्टफोन, या पेरेंट्स हैं अगर घर में एक सदस्य के पास फ़ोन है और वो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वो घर से बाहर है, तो ये अभी भी हमारे लिए चैलेंज है. ये चीज़ें ऑन पेपर से ही हैं, अगर हम धरातल पर देखें तो बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि उन लोगों को मोटिवेट करना अभी भी 70-80% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी एजुकेशन का की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रही है, जो हमारे स्कूल्स में बच्चे आते हैं. तो उनकी काउंसलिंग अगर हम करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे होते हैं कि हम रोटी कमाने जा रहे हैं, तो अभी भी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए उतने अवेयर नहीं हैं. कुछ परसेंट हैं जो हो रहे हैं, और वो वही लोग हैं जिनकी खुद से अपना उन्होंने चेंज करा है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो कर रहे हैं. लेकिन 70-80% बच्चों के पास जो हमारा ऑनलाइन मटेरियल था, जो मैंने फील किया, वो ऑन पेपर्स वाली चीज़ें हैं, रियलिटी में वो वर्क नहीं है. टीचर्स आर डूइंग, बट पेरेंट्स वाले लेवल पर 25% ही पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको दीक्षा ऐप या हम लोगों का रीड अलोंग ऐप, बहुत सारी चीज़ें हमारी थी उसमें. पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए भी गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट, लेकिन वो चीज़ें केवल वहीं तक सीमित हैं, जैसे कि वो नहीं, उस चीज़ में अभी हम बहुत सक्सेस हमें नहीं मिली.
मैम SARP जब आपने कोविड में काम किया, तो उस समय आपका डाइट के साथ कैसा कनेक्शन था, मतलब डाइट के साथ आपकी कुछ बातचीत रहती थी?
हाँ मैम, डाइट से भी हम लोगों को, जैसे स्कूल जो भी हमारी मीटिंग्स होती थी, उसमें हम अपने डाइट मेंटर्स को भी इन्वॉल्व करते थे.
अच्छा.
और उन लोगों से भी डिस्कस करते थे, तो उसमें भी मैम यही है कि ब्लॉक टू ब्लॉक डिफर करता है कि सेल्फ एफर्ट्स आपके कितने हैं. लाइक अब मैं अगर एक ब्लॉक की डाइट मेंटर हूँ, तो NAT के एग्ज़ाम में मैंने मॉर्निंग में अपने ब्लॉक में कॉल करके ये चीज़ कही थी कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल, आई एम इन फील्ड, तो अब वो हर ब्लॉक में उस तरीके का काम हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैम ये जो है हमारा पूरा इंडिविजुअल भी है, टीम भी है और इंडिविजुअल भी है. सपोज अगर 6 लोग काम नहीं कर रहे हो, हम करना चाहते हैं तो हम करेंगे, है ना, और 2 लोग हो सकता है हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, वो उन 2 लोगों को देखकर अच्छा अपने आप को अपग्रेड कर रहा है या वो 6 नहीं कर रहे हैं उनको देखकर अपने आप को कम करेगा. तो कुछ चीज़ें मैम इंडिविजुअल हैं, ठीक है, उसमें सपोज हमें किसी ने कहा आप ज़्यादा जो है काम कर रहे हैं, नहीं कोई नहीं, तो उसमें हम लोगों को बीइंग इंडिविजुअल सोचना पड़ेगा कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर माय जॉब. जॉब हमें जस्टिफाई करनी है या कैसे करना है. तो
मैम एनजीओ की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से उन्होंने क्लास की परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया है, मतलब क्लास में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है साइंस की क्लासेस में बेसिकली.
मैम यहाँ पर जो हमारे एनजीओ हैं तो सपोर्टिव हैं और उनका जो मेन है कि उन लोगों का थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा है
जी.
तो उसमें अगर साइंस में हम देख रहे हैं तो लैब तो नहीं है
जी, जी.
लेकिन हाँ एक्टिविटी पर फोकस है.
अच्छा.
एक्टिविटी तो करते हैं लेकिन साइंस सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा, मतलब मेरे डैड की अगर मैं बात करूँ तो मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा कि हाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
जी, जी.
पर बाकी सब्जेक्ट्स में जो एनजीओ का रोल है वो अच्छा है कि वो लोग एक्टिविटी या कंप्यूटर लैब है जैसे हमारे यहाँ, तो वो और कहीं नहीं है
जी, जी, जी.
तो कंप्यूटर लिटरेसी पर तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का बहुत अच्छा वो है, क्योंकि अगर हम अपना इंडिविजुअल डाइट का देखें तो उतने कंप्यूटर्स नहीं होते जितने उस लैब में हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है. अगर स्टूडेंट चाहे तो उससे बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है
जी, जी.
या उनको जो असाइनमेंट दिया जाता है और डेली उसकी शायद रिपोर्टिंग जो हम करते हैं, मतलब थोड़ा जो हम देखते रहते हैं, तो वो चीज़ें बच्चों के लिए न्यू भी हैं और अभी जैसे उन लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें भी बताई जाती हैं, कदम प्लस की विजिट भी कराया जाता है, तो जितना मैम प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए. अभी जैसे मैंने साइंस में भी कहा कि सब्जेक्टिव पर हम फोकस ना करें, वो हमारा जो क्लासिकल पैटर्न चल रहा है क्लासिकल वाला, वो थोड़ा सा अपग्रेड करें हम उस चीज़ को. बच्चों को जैसे हम यहाँ प्रैक्टिकली उनको एक अच्छा टीचर कैसे बनना है, वो बच्चे को कैसे डील करेंगे, जैसे अभी हम स्पेशल एजुकेशन पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं यहाँ पर, उसकी ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है वो उसमें डिसलेक्सिया बहुत है.
अच्छा.
अभी अगर हम यहाँ बात करें तो शायद डिसलेक्सिया के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होता होगा.
अच्छा.
क्योंकि वहाँ पर बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम बहुत होती है जो मैंने फेस की.
अच्छा.
तो उस लेवल पर हम उस स्टूडेंट को क्या सिखा रहे हैं, तो शायद नहीं. तो बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ हमें उन बच्चों के स्तर के अनुसार जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं ऑन पेपर्स नहीं, उन पर फोकस करना चाहिए. तभी स्तर, तो तभी यही बच्चे टीपी में जाएंगे
जी.
तो टीपी में जब वो टीचिंग प्रैक्टिस में जाएगा और उसको हमने यहाँ से अच्छे से अगर हमने प्रिपेयर कर दिया कि ये योजनाएं चल रही हैं, स्कूल का एटमोसफियर ऐसा होता है, आपको इस तरीके के बच्चे मिलेंगे वहाँ पर, आपको उन्हें ऐसे डील करना है
जी.
तो अगर हम सभी लोग उस तरीके से उनके साथ करेंगे तो शायद वो एक बहुत अच्छे टीचर बन पाएंगे
जी.
लेकिन क्या है कि हम लोग केवल सब्जेक्ट या उन स्कूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, और वो शायद मैम तभी कोई उनसे शेयर कर सकता है जब उसने उस चीज़ को खुद फेस किया हो. लाइक हम सपोर्टिव में जा रहे हैं और हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं हम बच्चों को आके बताएं कि वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसके ऊपर हम एक एक्शन रिसर्च करें उनसे
जी, जी, जी.
तो वो तभी होगा मैम जब सभी सब्जेक्ट के लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. तो अगर हम सोचें हम 2 लोग कर रहे हैं और नहीं कर रहे
जी.
तो कई बार ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है मैम, जो वर्क कर रहा होता है उसको भी बहुत सारी चीज़ें फिर फेस करनी पड़ती हैं. तो वो कल्चर है हम लोगों के सभी इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट सेक्टर में
जी, जी.
वो प्राइवेट में नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो अराउंड 15 ईयर्स प्राइवेट स्कूल्स का है.
अच्छा.
तो
मेरठ की मैम?
हाँ जी, मेरठ, नॉट इन मेरठ, इन डिफरेंट सिटीज.
अच्छा. और यूपी ओनली?
यूपी ओनली. तो मैंने उन चीज़ों को फेस किया है कि वहाँ हम लोग वर्क करते हैं तभी हम लोगों की पहचान बनती है
जी.
और जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाता है तो वो सोचता है मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया, मेरी पहचान यहाँ से है. और वहाँ हमारी जो पहचान होती है वो हमारी टीचिंग से होती है कि वो टीचर इतना लेबर कर रहा है या उसका रिजल्ट 100% है. तो ये वाला थोड़ा सा एक, बिकॉज आई हैव वर्कड इन बोथ द सेक्टर्स, तो मैं उस चीज़ को फील करती हूँ कि जो केवल गवर्नमेंट सेक्टर में डायरेक्ट आते हैं तो उन लोगों में थोड़ा सा ये वाली चीज़ होता है. जैसे एनजीओ है, एनजीओ प्राइवेट है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं और उनको पता है कि हम तभी हमारी पेमेंट या तभी हमारी चीज़ें होंगी जब हम इतना वर्क करेंगे. और यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को कुछ लोग शायद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो उसका भी वर्किंग पर इफेक्ट आता है. है ना, तो अपने जो मेरे व्यूज हैं, मतलब ये कोई वो नहीं है.
मैम थैंक यू सो मच. मैम और कुछ है जो आपको लगता है कि डाइट में बेहतर हो सकता है या फिर आपको कुछ और बताना?
डाइट में करने के लिए बहुत चीज़ें हैं और शायद इसीलिए डाइट्स का कंसेप्ट आया, लेकिन वो उस तरह से शायद हो नहीं पा रहा है. मतलब हम लोगों को पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो माध्यमिक के हों, मैं ये नहीं कह रही कि हम केवल प्राइमरी के टीचर्स को ही लें, हम माध्यमिक के टीचर्स को भी जिस सब्जेक्ट का जो परफेक्शनिस्ट है वो बेस्ट करे, जिससे हमारी सिटी में कुछ नई चीज़ें हों. जैसे साइंस में ही अगर हम बात करें तो हम माध्यमिक के स्कूल्स में भी जाते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल का स्टैंडर्ड बहुत पुअर होता जा रहा है. तो डायट को हम उस चीज़ में भी इन्वॉल्व करें क्योंकि ये तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर हम उसको जो उसकी फुल फॉर्म में ही आता है ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग नॉट ओनली फॉर DL.ED स्टूडेंट्स हो, टीचर्स के लिए भी एक होलिस्टिक ट्रेनिंग वाला कंसेप्ट हो, नॉट ऑन पेपर्स, रियल नॉलेज वाइज. तो उस रियल नॉलेज में हम लोग अपनी एक बहुत अच्छी टीम सेटअप करें जिले में ही कि हाँ ये अगर विज्ञान के प्रवक्ता हैं तो ये मास्टर हैं अपने सब्जेक्ट के और इनको इस चीज़ में ये एक्सपर्ट हैं, कोई GGIC का है या कोई माध्यमिक का टीचर है वो इस चीज़ का एक्सपर्ट है. हम ऐसे लोगों की एक बहुत अच्छी अपनी टीम तैयार करके और जहाँ काम नहीं हो रहा उनको अच्छा करें, तो तभी वो हर डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूव होगा ना. अगर हमारा जो डाइट्स का कंसेप्ट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है तो वो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अच्छी हो. लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और बहुत सारे फील्ड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही हमारा अच्छा रिस्पांस नहीं है. तो वो पूरा, जैसे अभी मैंने बीच में पढ़ा था कि यूपी में शायद मेरठ एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार है.
अच्छा,
फोर्थ है वो यूपी में.
अच्छा,
नंबर वन इज़ ऑफ प्रयागराज. अभी ये कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट एक न्यूज़पेपर में मैंने देखी थी. तो मेरठ अगर 75 में वो 4 में दिखा रहे हैं शिक्षित बेरोजगार, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा. तो हमें उस चीज़ का एनालिसिस हर हायर लेवल पर करना पड़ेगा क्योंकि वो स्कूल से ही खराब हो रहा है ना. आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, वो बच्चा BSc में चला गया, वहाँ उसको कुछ नहीं आता, वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने स्कूल में सीखा होगा, तो उसको कॉलेज लेवल में भी कुछ नहीं कराया. फिर जब वो यूनिवर्सिटी में गया तो उसको वहाँ भी नहीं आया, तो ना तो वो एक अच्छा टीचर बनेगा ना वो आगे कुछ करेगा. तो अगर हम उसके रूट लेवल पर ही उन चीज़ों को फोकस करें, एक टीम अच्छी सी बनाकर हर सब्जेक्ट्स में ऐसे मास्टर्स सिलेक्ट करके, और वो हर जगह होते हैं. जो ARP का कंसेप्ट आया उसमें ये चीज़ें मैम बहुत अच्छी आई कि लोगों को एक्सपोजर मिला.
जी.
बहुत ऐसे टीचर्स थे जो बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हुई तो उसमें ये चीज़ें अच्छी हुई कि हमारे पास ऐसे टीचर्स आए जो भी हाईलाइटेड नहीं थे. तो अगर हम वो चीज़ें माध्यमिक में भी करके और पूरे जिले को एक साथ लेकर चलें तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं.
थैंक यू सो मच.